ओम शांति।
आज कहना पड़ता है कि वृत्ति परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए वह आज नहीं रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, स्वार्थ समाज की शक्ति को नष्ट कर रहा है। स्वार्थ ने एक दीमक का रूप धारण कर लिया है, और जिस प्रकार दीमक अगर किसी लकड़ी को लग जाए तो उस लकड़ी को खोखला कर देती है, इसी प्रकार स्वार्थ रूपी दीमक ने इस समाज की नींव को खोखला कर दिया है। तो आवश्यकता है इस स्वार्थ को समाप्त करने की, परोपकार की भावना जागृत करने की, प्रेम और भाईचारा की भावना जागृत करने की। हमें याद आता है कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे वे यही कहते थे कि देखो, हमें समाज में रहना है, इज्जत से रहना है, हम बाल बच्चे वाले हैं तो इज्जत से रहने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर इज्जत चाहते हैं तो बेईमानी नहीं चलेगी, नाम बदनाम होगा। तो इज्जत बहुत प्यारी है मनुष्य को, स्वमान बड़ा प्यारा है, रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, लेकिन उस रिस्पेक्ट के लिए कर्म हमारे ऊंचे हो तब तो रिस्पेक्ट औरों से मिले। हम जो दूसरों से चाहते हैं वे पहले हम करके दिखाएं तब तो रिस्पेक्ट मिले। अगर हम वे नहीं कर पाते हैं बातें तो हम रिस्पेक्ट के पात्र भी नहीं हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज की वृत्ति कितनी बदल गई है। जो पहले जमाने में ये कहावत थी कि इज्जत का सवाल है, मुझे बेईमानी नहीं करनी है, आज वह भाव बदल गया है। और लोग यही कहते हैं, भाई मुझे इज्जत से रहना है, समाज में कुछ अपना वर्चस्व कायम करना है तो ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। बस बदल गया है हमारे अंदर वृत्ति का स्वरूप। ईमानदारी से अगर चलेंगे तो हम समाज में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि धन कमाने का एकमात्र साधन ही रह गया है भ्रष्टाचार, जो समाज की नींव को खोखला कर रहा है। और इसका मूल कारण है मनुष्य में स्वार्थ। तो एक ओर तो विज्ञान वरदान सिद्ध हो रहा है, हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता तो है ही, और धन को इतना सहज नहीं आता है। इसलिए भ्रष्टाचार का ही माध्यम हमने ले लिया है धन को कमाने के लिए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन तो सुख देता है। आज अगर धन नहीं होता तो हम कैसे जी पाते, सब कुछ पैसे से मिलता है। लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, ये चाहिए वृत्ति में परिवर्तन। पहले जमाना था जब हमारे बुजुर्ग कहते थे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन आज का परिवर्तन वृत्ति में क्या आ गया है कि चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ गया, अब चाहिए इसमें परिवर्तन, वापस आ जाए हम अपनी असली वृत्तियों पर। और उसके लिए आवश्यक है कर्मों का ज्ञान, क्योंकि कर्म की गति बड़ी बलवान है। मनुष्य आज कर्म की गति को भूल चुका है। क्यों भूल गया है? क्योंकि वो देख रहा है समाज में कि जो भ्रष्टाचार से धन कमाते हैं वे तो मौज कर रहे हैं, उनको तो बड़ी इज्जत मिल रही है, मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, विज्ञान का लेटेस्ट आविष्कार उनके पास है, उनका सुख ले रहे हैं। और जो बेचारे ईमानदारी से धन कमाते हैं उनको तो दो रोटी भी नसीब नहीं होती है। इसीलिए विचार चलता है कि आखिर ये ईश्वर की दुनिया है तो फिर न्याय कहाँ है। तब एक बहुत ऊंची उक्ति कहावत याद आती है, कहा गया है धीरज का फल मीठा होता है। कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। कहा जाता है कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये जो ऊंची ऊंची बातें हैं इनको आज मनुष्य भूल चुका है और केवल वर्तमान स्वरूप को देख करके उसी को ही सत्य समझ बैठा है। इसलिए विज्ञान और आध्यात्म का हमेशा झगड़ा चलता ही रहता है। विज्ञान कहता है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, और आध्यात्म कहता है कि जो दिखाई देता है वो सब असत्य है। कितना बड़ा अंतर! क्यों असत्य है? क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, और जो चीज परिवर्तनशील है वो आध्यात्म में असत्य मानी गई है। इसलिए कहा जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। तो अगर हम सत्य को पहचानना चाहते हैं तो उसका मापदंड क्या है? क्या यही विज्ञान का चकाचौंध? मन नहीं मानता, क्योंकि इंद्रियों का सुख अल्पकाल का सुख है। इसलिए आज हम देखते हैं इंद्रियों के सुख में भी कितना जल्दी परिवर्तन आ रहा है। वही हम टेलीविजन पर दृश्य देखते थे, एक ही दृश्य काफी लंबा समय तक चलता था, आज एक एक सेकंड में दृश्य परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन अच्छा लगता है। वही चीज भोजन में हो, वही बातें, वही चीजें हम खाएं रोज रोज, मजा नहीं आएगा, परिवर्तन चाहिए। वही दृश्य रोज देखे, परिवर्तन चाहिए, वही चीज नहीं चाहिए। तो परिवर्तन तो एक अच्छी चीज है, बुरी चीज भी नहीं है, लेकिन वो परिवर्तन किस कीमत पर? इस कीमत पर नहीं कि हम अपनी शांति गंवा बैठे, इस कीमत पर नहीं कि हम अपने चरित्र को खो बैठे, इस कीमत पर नहीं कि हम अपने देश की तबाही कर दें। ये कीमत हमें नहीं देनी है उसके लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शांति की कीमत पर हम केवल भौतिकवाद में आ रहे हैं। आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ों में फंसते जा रहे हैं। तो आवश्यकता है वृत्ति परिवर्तन की, क्योंकि अब हम समाज में अकेले नहीं हैं। विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। एक व्यक्ति अगर जापान में अपनी उंगली उठाता है तो अमेरिका पर उसका असर पड़ सकता है। इतना तुरंत प्रभाव हजारों मील दूरी पर पड़ सकता है विज्ञान के कारण। अर्थात विज्ञान ने यह तो हमें सुख दे दिया कि संसार को छोटा कर दिया है, किसी ने कहा कि विज्ञान की शक्ति ने इस दुनिया को एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बना दिया है। लेकिन आज तो हम कहेंगे ग्लोबल विलेज भी बहुत बड़ी चीज है। इट इज अ ग्लोबल लिविंग रूम, एक ही कमरा है। जैसे विलेज में तो फिर भी अलग अलग घर होंगे, कोई किसी घर में क्या कर रहा है दूसरे को पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर के बाद पता चल सकता है। लेकिन एक लिविंग रूम में, एक सिटिंग रूम में कौन क्या कर रहा है सब एक दो को देख रहे हैं, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए अगर ग्लोबल लिविंग रूम कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सब एक दो को जान सकते हैं, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। इसलिए हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा समाज है। तो अगर हम इस समाज का उत्थान चाहते हैं तो हम दूसरे पर पॉइंट आउट नहीं करें कि आपको बदलना है, आपको बदलना है, लेकिन हम खुद को देखें। तीन उंगली दूसरे तरफ नहीं है, हमारे तरफ है जब हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं। तो अगर हम समाज का परिवर्तन चाहते हैं तो स्व परिवर्तन अति आवश्यक है। स्व परिवर्तन के अंतर्गत अपनी वृत्तियों का परिवर्तन, जिसके आधार पर परिवार में सामंजस्य और फिर हमारे वर्क प्लेस पर सामंजस्य, हार्मनी, और फिर हमारे मित्रों और अन्य रिश्तेदारों के बीच सामंजस्य, हार्मनी विद द सेल्फ, हार्मनी विद द एटमॉस्फियर, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, ये अति आवश्यक है अगर हम सच्चा निर्माण करना चाहते हैं तो। और अगर केवल स्वार्थी रहेगा तो दूसरे की तबाही करने से पहले हम खुद की ही कर लेंगे, जिसके लिए कहा गया है कि दूसरे के लिए अगर कोई खड्डा खोदता है तो पहले वो स्वयं गिर जाता है। तो क्या हम करें जो वृत्ति का परिवर्तन हो? उसके लिए परमात्मा ने हमें बहुत ऊंची शिक्षा दी है। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि जो सहज मिले वो दूध के बराबर है, जो मांग लिया वो पानी के बराबर है, और जो खींच लिया वो रक्त के बराबर है। अब ये तीन बातों को समझना होगा। हम किसी के घर जाते हैं, हम दूध नहीं मांगते हैं, पानी जरूर मांगते हैं, पानी मांगा जाता है। लेकिन अगर कोई अपने आप दूध देता है, वो सहज मिल जाता है, तो हर चीज वो दूध बराबर है। सहज जो मिलती है उससे शक्ति मिलती है, वो आपका श्रेष्ठ भाग्य है जो आपको प्राप्त हुआ। और उस प्राप्ति में उनकी दुआएं भी साथ में समाविष्ट है। तो दुआओं के साथ प्राप्त हुई चीज वो आपका ऊंचा भाग्य है, वो दूध के समान है, वो आपको शक्ति प्रदान करेगा, आपको सच्ची खुशी दिलाएगा, आपको तृप्त बनाएगा, आपको एक संतोष की अनुभूति कराएगा। लेकिन जो मांग लिया वो पानी बराबर है, उस वक्त का तो आनंद प्राप्त होगा जरूर, प्यास तो बुझेगी, लगेगा कि हाँ मैंने हासिल कर लिया, देखा मैंने कर लिया, आई हैव वन द गेम। लेकिन वो क्षण भंगुर होगा, उसका नतीजा अंत में कोई श्रेष्ठ नहीं होगा। कारण कि दिया जरूर किसी ने, परंतु बहुत भारी मन से दिया, भले बद्दुआई नहीं दी लेकिन भारी मन से दिया, रिलक्टेंटली दिया। लेकिन जो खींच लिया, वो रक्त के बराबर है। ये जबरदस्ती किसी से ले लिया उसकी बद्दुआओं के साथ, ये किसी के भी काम नहीं आएगा। जैसे किसी का नाहक खून बहा लिया, वो आपको तो मदद नहीं करेगा, खून आपको तो वो खून नहीं मिलेगा, उसका तो गया पर आपको भी कोई सहयोग नहीं मिला उसका, वो रक्त तो बह गया। इसलिए अगर बद्दुआ के साथ कमाया हुआ धन ये ना हमें सुख देगा, न किसी और को सुख देगा, न समाज को श्रेष्ठ बनाएगा। इसीलिए हमने कहा कि आज समाज खोखला बनता जा रहा है। तो वृत्ति परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? स्व परिवर्तन और साथ में यह चिंतन कि मेरे हर कर्म में अनेकों की दुआएं समाई हुई हो। दुआ मांगी नहीं जाती है, दुआ अपने आप मिलती है। जिसको जिसका आपने जीवन का उद्धार किया उसके दिल की दुआ अपने आप निकलेगी। आपको कहने की भी जरूरत नहीं है कि हमें दुआ दो। नेकी कर दरिया में डाल, ये उक्ति इतनी प्रसिद्ध है, लेकिन आज वो कहां रहा ये विचार? पहले तो मन में यही आता है कि मुझे इससे पहले मिलेगा क्या, ये करने से पहले मुझे क्या फायदा होगा? अगर मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है तो मैं क्यों करूं? ये है स्वार्थ। सेल्फ हैज बिकम द सेंटर। हर एक सेल्फ सेंटर्ड बन जाने के कारण किसी को भी प्राप्ति नहीं हो रही है। और लग तो रहा है कि देश विकास कर रहा है, परंतु किस कीमत पर? चरित्र की कीमत पर। जो हमारा भारत देश इतना ऊंचा गाया गया है, जहां के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि जहां दूध घी की नदियां बहती थी, यथा राजा तथा प्रजा समृद्ध थे, सुखी थे, भारत विश्व का लाइट हाउस था, आध्यात्म प्रधान देश था, आज उस देश की यह हालत देखकर अनेक देशों को तरस भी पड़ता है। लेकिन क्या हमें अपने ऊपर नहीं तरस पड़ता है कि हम क्या थे, कितने ऊंचे थे और आज कहां पहुंच गए हैं? जिस देश ने सारे विश्व को प्रकाश दिया, आज वो देश कहां पहुंचा है? विकास के नाम पर हम क्या क्या कर रहे हैं? हर क्षेत्र में देखिए, राजनीति एक सत्ता है, बहुत बड़ी सत्ता है, लेकिन आज राजनीति के अंतर्गत भी हम देख रहे हैं सेल्फ सेंटर्ड। वोट बैंक के पीछे ही सब पड़े हुए हैं, वोट बैंक बस, और कुछ नहीं है। देश की तबाही हो रही है। तो एक और है राज्य सत्ता, दूसरी और है धर्म सत्ता, और तीसरी और है विज्ञान की सत्ता। विज्ञान जो वरदान सिद्ध हो सकता है, वो स्वार्थ के कारण अभिशाप सिद्ध होता जा रहा है। शांति के नाम पर हम केवल हथियारों का की होड़ बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या परिणाम होगा इसका ये भी हम जानते हैं। तो हम क्या करें उसके लिए? हम पहली बात तो यह कह करें कि हम ये नहीं कहें कि दूसरा बदले तो मैं बदलूं, बस ये परिवर्तन करना है, मुझे बदलना है तब मेरा परिवार बदलेगा, तब परिवार से समाज बदलेगा, समाज से देश बदलेगा, देश से विश्व। कई कहते हैं कि मेरे एक के बदलने से क्या होगा, पर एक पर भी बहुत कुछ निर्भर है। आप अनुभव करते होंगे आपके ही परिवार में। मान लीजिए एक ही व्यक्ति शराबी है और कोई शराब नहीं पीता है, केवल एक ही व्यक्ति इतना शराब पीता है, सारा धन उस शराब में लुटा रहा है, क्या उस शराबी का प्रभाव पूरे परिवार पर नहीं पड़ता? पड़ता है या नहीं? अवश्य पड़ता है। पूरा घर दुखी हो जाता है, केवल घर ही नहीं लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी हो जाते हैं एक शराबी के कारण। तो जब एक व्यक्ति का इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है तो पॉजिटिव प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता है? एक महात्मा गांधी ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, लीडर बना, सच्चा लीडर। तो आवश्यकता है अब ऐसे लीडरों की जो सचमुच लीड कर सके, केवल पुश नहीं करे पर पुल करे, ऐसे लीडरों की जरूरत है। अब तक हम पुश ही करते आए, तुम करो, वो कहेगा मैं क्यों करूं, तुम करो, तो कौन करे? हमारे पास एक राजनेता आए थे, जब हमने उनको राजनीति की बातें कुछ बताई, आज की हालत, तो बड़ी विचित्र बात उसने कही। कहता है बहन जी, हम बुरे अगर हैं तो जनता हमको वोट क्यों देती है? जनता को बदलना चाहिए ना, वोट किसको दे, समझ करके दे ना, अगर हम बुरे हैं तो बुरी कौन बन गई, जनता या वो राजनेता? जनता बुरी हो गई। इसलिए दूसरा बदले, बच्चा कहे माता पिता बदले, माता पिता कहे टीचर बदले, टीचर कहे कि माँ बाप का ही कर्तव्य है हमारा नहीं, आखिर किसका कर्तव्य है बच्चे का परिवर्तन करना? बच्चा तो उनको बड़ों को देख के ही वही अनुसरण करेगा। इसीलिए हम कैसे अपने आप को बदलें, उसके लिए आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है, अंतर की ज्योति जगाने की आवश्यकता है, यह अनुभव करने की आवश्यकता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। हम इस संसार में किस लिए आए? ईश्वर का नाम रोशन करने आए। इस संसार की कोई वस्तु नहीं ले आए साथ में और नहीं ले जाएंगे, हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली ही जाएंगे। सिकंदर जैसे बड़े राजा, दुनिया का राजा बनने जा रहा था, लेकिन कहना पड़ेगा कि अंत में ही उसको रियलाइजेशन हुआ, पर फिर भी अंत में हुआ तो सही। और मरते वक्त अपने सिपाहियों को कहा कि देखो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर निकालना, ताकि दुनिया को यह सबक मिल जाए कि सिकंदर राजा दुनिया का राजा बनने जा रहा था, लेकिन जब गया तो हाथ खाली गया, ये सबको सबक मिल जाए। इसीलिए बाहों बल से कुछ भी होने वाला नहीं है, बाह्य शक्ति की भेंट में आंतरिक शक्ति इतनी ऊंची है, अगर उस शक्ति का हम विकास करेंगे तो प्रकृति की शक्ति हमारे लिए सेवक बन जाएगी।